आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था भोजन क्या होता है और भोजन के अवयव क्या होते हैं। तो हम सबको याद है भोजन की परिभाषा और भोजन में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या व उनके नाम। तो कितनी संख्या होती है? 8 संख्या होती है और उनके अलग अलग नाम हमने पिछले ऑडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो एक बार हम समरी दे देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो भोजन में उपस्थित 8 अवयव हैं उनके नाम रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व रेशे। फिर क्या पढ़ा था? भोजन में पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। तीसरा, इसके बाद क्या पढ़ा था? शरीर की नियमित वृद्धि विकास के लिए हमारे भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक हैं। ऐसा भोजन क्या कहलाता था? संतुलित आहार। ठीक है, फिर अलग अलग विटामिन्स की कमी से होने वाले अलग अलग नाम, रोगों के नाम हमने जाने थे। ठीक है, अब हम आज अभ्यास कार्य करेंगे प्रथम अध्याय का। ठीक है, तो पेज नंबर 11 पे क्वेश्चंस दिए हैं, 11 नंबर पेज पर उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही विकल्प को चुनना है। प्रथम प्रश्न में कौन सा विकल्प चुनना है? सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या मिलता है? हमने पढ़ा था ना कि अमीनो एसिड से मिलकर हमको प्रोटीन मिलता है बनकर। तो अमीनो एसिड किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है? द नाइट्रोजन, N। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये पूरी टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है पेज नंबर 10 पर, जिसमें से आप देख सकते हैं। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से या डेफिशिएंसी से। विटामिन ए, सही आंसर है अ, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी ब्लैंक स्पेस दिया है, जिसको आपको सही विकल्प से भरना है, सही शब्द से भरना है। प्रथम है, पहला, भोजन में विटामिन सी की कमी से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के बारे में हमने पढ़ा था, क्या रोग होता है अगर हम उसको कम मात्रा में लेंगे? स्कर्वी। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। ये मुंह में होता है, कौन? मसूड़ों में। क्या आंसर है इसका? स्कर्वी। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बेरी बेरी? विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा, वसा जल में डैश होती है। तो हमने वसा के बारे में पढ़ा था, वसा यानी तैलीय पदार्थ या फैट्स, तो वो जल में घुल नहीं पाते, उसके लिए क्या शब्द पढ़ा था? अविलय। वसा जल में अविलय होती है। अगला प्रश्न है, जल शरीर में मुख्य रूप से डैश का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विलायक का कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। ठीक है, जिसकी वजह से तापमान नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा, भोज्य पदार्थों में सेल्युलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? रेशेदार पदार्थ किस में पाए जाते हैं या सेल्युलोज नामक पदार्थ किस में पाया जाता है? क्या कहते हैं उनको? रफेज। क्या कहते हैं? रफेज। अब आएंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न पर। हमें इन प्रश्नों का जवाब संक्षिप्त में देना है, ठीक है? संक्षिप्त यानी छोटा सा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है? पहला प्रश्न है, संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। ये हमने पढ़ा था, संतुलित आहार। पहले समझ लेते हैं क्या होता है। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन के अवयव सही मात्रा में हों, उस आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। इसकी परिभाषा अब हम सुनेंगे। हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक हैं। वे सभी अवयव यानी 8 अवयव, ठीक, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है? ये इसका उत्तर है। पेज नंबर 10 पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक? हो गया क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके कोई भी 2 कार्य हमको लिखने हैं। इसका उत्तर हमको पेज नंबर 5 पर मिलेगा, जहां हमें प्रोटीन के कार्य दिए गए हैं। तो पहला बिंदु है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। यह पहला कार्य हो गया, ठीक है? दूसरा कार्य है, ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसी को टूट फूट कहते हैं, ठीक है? उसको ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? प्रोटीन। तो ये हो गए प्रोटीन के 2 कार्य। अन्य कार्य दिए हैं, आपको जो आसान लगे आप उनको लिख लीजिएगा, ठीक है? पेज नंबर 5 पर अब आएंगे तीसरे प्रश्न पर, किन्हीं 2 विटामिन के नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग बताइए, ठीक है? ये अभी हमने पहले भी किया इसी एक्सरसाइज में, इसी अभ्यास कार्य में, अब फिर से इसको कर लेते हैं। तो कोई भी 2 विटामिन याद कर लीजिए, विटामिन ए और विटामिन बी, ए बी याद कर लीजिए। ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था, रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। विटामिन ए अगर हम लेते हैं तो हमारी आंखें अच्छी होती हैं, और अगर उसका हम सही अनुपात में ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और हमें कौन सा रोग होगा? रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देगा। दूसरा विटामिन है विटामिन बी, यदि इसकी कमी होगी तो हमें कौन सा रोग होगा? बी से याद रखिए, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब आएंगे चौथे प्रश्न पर, रफेज किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। रफेज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, अब हम इसको फिर से याद करेंगे। तो हमने याद किया था कि छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी या फिर पत्ता गोभी, बंद गोभी, इनमें सेल्युलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हीं रेशों को हम रफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हमने पढ़ा था ना खाद्य रेशे, ये भी एक भोजन के अवयव के अंदर अंतर्गत आता है। तो खाद्य रेशे के अंतर्गत हमें पेज नंबर 8 पर यह उत्तर मिलेगा। अब इसके 2 कार्य, तो रफेज के 2 कार्य कोई भी आप बता दीजिए। पहला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करता है, ठीक है? दूसरा कार्य है, रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है, ठीक। ये हो गए दो। आपको कोई भी दो बताने थे बता सकते हैं, बाकी आपको जो आसान लगे आप पेज नंबर 9 से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन समझ आ गए। अब हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हमें इनका थोड़ा लंबा जवाब देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अपनी किताबों में देखिए, भोजन के मुख्य अवयवों के नाम लिखते हुए किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो प्रथम हम जो इसमें करेंगे, भोजन के मुख्य अवयव 8 ही होते हैं और 8ों का नाम हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 8? सबको याद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ठीक है। ये हो गए 8 अवयव, इनका नाम उल्लेख हमको करना था। अब इसके बाद किन्हीं दो जो आपको आसान लगे, जो आपको याद हो, उनका वर्णन करना है, पूरा बताना है कि वह क्या होते हैं, उनका मुख्य स्रोत, कार्य और यह किन तत्वों से मिलकर बने हैं, यह हमको बताना है अपने प्रश्न में, ठीक है। तो हम पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, वही हमको यहां पर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इसके मुख्य स्रोत हैं 2, पहला स्टार्च युक्त, दूसरा शर्करा युक्त। पेज नंबर 3 पर हम देख सकते हैं, ठीक है, एक चित्र बना हुआ है 1.3, उसमें दोनों कैटेगरीज दी हुई हैं। तो स्टार्च युक्त जो है वह हमें किस तरीके के भोजन से मिलेगा? रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरवी, केला, ठीक है। दूसरा है शर्करा युक्त। शर्करा युक्त यानी चीनी युक्त, तो किस किस में मिलता है? गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। ये तो हो गए स्रोत। अब आप इनके मुख्य कार्य बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? कार्य। तो पहला कार्य हो गया, यह ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को नियंत्रित या कंट्रोल में रखते हैं। आपको ये लिखना है, ठीक है। कोई भी दो में से हम क्या बता रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको ये लिखना है। दूसरा बात करेंगे प्रोटीन की। तो पेज नंबर 4 पर देखेंगे प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिका के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है, ठीक है। ये इसकी छोटी सी परिभाषा दी है कि ये क्यों आवश्यक है। तो प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखना है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब इसके स्रोत बताएंगे, ठीक है। हमने याद किया था इसके स्रोत कौन कौन से हैं, और नहीं याद हुआ फिर से याद करेंगे। चित्र नंबर 1.5 और 1.6 में दिए भी हैं, अंडा, दूध, सोयाबीन, दालें, ये दो तरीके के होते हैं। एक जो हमें जंतुज या जानवरों से मिलते हैं, दूसरे होते हैं पौधों वाले, जो हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं पेड़ पौधों से, वेजिटेबल या फ्रूट्स, ठीक है, या दालें, ठीक। तो ये हो गए स्रोत। अब प्रोटीन के आप कार्य बताएंगे कि इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है, यह आपको लिखना है। ये सबसे मेन बिंदु है, सबसे मुख्य। दूसरा है, ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक होती हैं। एक मेन बात और है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और एक और, यह मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, यह भी मुख्य बिंदु है। आपको इनमें से जो दो या तीन याद हो आप उन्हें लिखिएगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर एक, ठीक है। इसमें हमें भोजन के अवयव बताने थे और किन्हीं दो के वर्णन करने थे, ठीक है। हमने पहला प्रश्न कर लिया। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका जवाब क्या होगा, पहले हमें समझना है। पहले भी प्रश्न आया कि संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, लघु उत्तर में प्रथम प्रश्न था, वो हो गई इसकी परिभाषा। अब हमें ये बताना है कि ये क्यों आवश्यक है। अगर ना ले संतुलित आहार तो क्या होगा? उसको ऐसे समझेंगे कि संतुलित आहार जो होता है उसमें सभी भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट से लेकर रफेज तक होने आवश्यक होते हैं, और वो उसमें होते ही हैं। यदि हम उनका ग्रहण करेंगे, भोज्य पदार्थ लेंगे ऐसे जो संतुलित मात्रा में सभी अवयवों से मिलकर बना हो, तो हमारे शरीर की वृद्धि विकास अच्छे समुचित रूप से होगी, हमारी धातुएं पुष्ट होंगी, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हमारी मानसिक शक्ति अच्छे से कार्य करेगी। ये हो गई तीन बातें, ठीक है। इन्हीं को आप भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यक है। इसके अलावा हमारे शरीर में रोगोत्पत्ति नहीं होगी, कोई भी रोग आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा आहार, संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह दृढ़ होती है, अच्छी होती है। और हमने विटामिन्स के बारे में भी पढ़ा है ना, अगर हम विटामिन्स को कम मात्रा में लेंगे तो हमें अनेकों रोग होते हैं। रोगों का कारण क्या है? मुख्य कारण है आहार में पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। इसीलिए संतुलित आहार शरीर में आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार। अच्छा, प्रश्न नंबर तीन हमारा रह गया, हमारे भोजन में खनिज लवणों का होना क्यों आवश्यक है? तो खनिज लवण के बारे में भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे। पेज नंबर सात पे खनिज लवण दिया हुआ है। यह हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि ये क्या कार्य करते हैं? ये इनके तीन मुख्य कार्य हैं, शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास। दूसरा कार्य है विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक। तीसरा कार्य है शरीर नियंत्रक। इसीलिए इनकी सही मात्रा हमारे आहार में सही अनुपात में होनी आवश्यक है। यदि हम सही तरीके से खनिज लवणों को नहीं लेंगे, जिनकी मात्रा, जिनकी संख्या 24 बताई गई है, तो हमारे शरीर में ये तीनों कार्य समुचित रूप से नहीं होंगे। अब आएंगे प्रश्न नंबर चार पर। आपके विद्यालय में मिड डे मील के साप्ताहिक मेन्यू का चार्ट तैयार कीजिए। तो ये आप खुद बताएंगे, खुद से बनाएंगे कि आपको जो मिड डे मील से खाना मिलता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है, दाल, रोटी, चावल, दही, अचार, पापड़, ये आपको खुद से करना है, खुद आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब आएंगे क्रियात्मक कार्य, एक्टिविटी, जो आपको खुद से करनी है। हम बस इसको आपको समझाएंगे। प्रश्न एक है, भोजन के अवयव स्रोत, प्रभाव व कमी एवं अधिकता से होने वाले रोगों का चार्ट बनाकर कक्षा में लगाएं। अब आपको एक चार्ट पेपर पर जो हमने अभी पढ़ा आठ अवयव, उनके स्रोत लिखने हैं। पहले उनके अवयव के आठों के नाम लिखने हैं, टेबल्स बना देंगे, ठीक है। फिर उनके प्रभाव, उनके स्रोत, फिर प्रभाव, उनके होने से क्या क्या होता है शरीर में। प्रभाव में आप कार्य लिखेंगे, एक एक कार्य, और उनकी कमी से होने वाले रोग, इनका चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अधिकता बोला है इसमें, अधिकता में यही है कि यदि हम किसी चीज को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो उससे क्या हो सकता है। तो ये आपको चार्ट बनाना है मिलकर बच्चों के साथ, आप लोग मिलके बनाइए और अपनी कक्षा के कक्ष में लगाइए। ये आपकी एक एक्टिविटी है, कुछ स्वयं करनी है। दूसरा प्रश्न है, भोजन के अवयवों की कमी से होने वाले कोई एक रोग के उपचार पर अपने शिक्षक की मदद लेते हुए भूमिका निर्वहन कीजिए, वे आओ रोग दूर भगाएं। ये आपका शीर्षक है, आओ रोग दूर भगाएं। इस पर आलेख तैयार कीजिए, एक एसे लिखिए और उसका अभिनय कीजिए, एक नाटक कीजिए, ठीक है। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देना है आपको, कोई भी एक रोग, ठीक है, और उसके उपचार के बारे में आपको अपने शिक्षक से पूछना है, उसके ऊपर एक आपको छोटा सा प्ले करना है, ठीक। जैसे आप ले सकते हैं, अभी आपने विटामिन की कमी से रोग पढ़े, कौन कौन से रोग होते हैं, उनमें से कोई भी एक रोग लीजिए और उसको हम दूर कैसे भगा सकते हैं इसके बारे में समझाइए, और दो लोग मिलकर उस पर प्ले कीजिए और अपने टीचर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। नमस्ते।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।